महीना शुरू करते हैं। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो उपर्छायारं नमो नूतवसाहुरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो भयो मंगलं कुंदकुंदात्यो धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं भुवन में सार पीत राख विज्ञान था शिव स्वरूप शिव कार नमो प्रियो संहार के श्री चैताला जी की तीसरी ढाल पर हम सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सम्यक दृष्टि के साथ में जो बाहर दिखने वाले आतंक होते हैं उन पर डिस्कशन किया, और जैसे ही आतंक उसके होते हैं सम्यक दृष्टि के, वैसे ही इससे विपरीत जो आठ दोष हैं, शंका होना, विषयों की आशा होना, दूसरों के दोषों को देखकर उजागर करने की प्रवृत्ति होना, ये सारे दोष उसके नहीं होते, ये वाली बात हमने अभी तक पढ़ ली है। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक?
नहीं, लाइक मुझे तो क्लियर है, दूसरों को किसी को ये तो पूछ सकते हो।
हम ये देख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के क्या क्या नहीं होता, तो सम्यक दृष्टि के शंका नहीं होती, उसके जगत की चीजों की आकांक्षा नहीं होती, उसके सिर्फ एक मोक्ष मार्ग में ही चलना है और मोक्ष की ही इच्छा है, उसको साधनों के प्रति बहुत वात्सल्य प्रीति होती है, जनधर्म की प्रभावना का बहुत भाव होता है, ज्ञानी गुरुजनों की सेवा का उसको भाव होता है, ये सब उसके जीवन को बनाते हैं।
अनुभव जी, आपके साइड पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो आप?
ओके, तो डिस्टरबेंस क्या रहे क्या आपको साथ में?
डिस्टरबेंस भी है थोड़ा, और क्लेरिटी भी इतनी नहीं है एकदम, परंतु थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़े ना तो भी थोड़ा, या आई डोंट नो, डिस्टरबेंस तो आपके वो और सचिन भाई के बीच में ही आता है, यहाँ और कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है हमारी ओर से।
ओके, नहीं मेरी साइड से ओके, अभी ठीक है।
आप थोड़ा आगे पढ़ो, फिर बता पाएंगे कि अगर डिस्टरबेंस है। दोबारा करें सचिन भाई आपको कनेक्ट। Sometimes दोबारा कनेक्ट करते तो चला जाता है।
ठीक है, वापस कनेक्ट हो सकते हैं फिर।
सचिन भाई बात ट्राई करो क्योंकि डिस्टर्बेंस आवे छे थोड़ो।
ओके
બેન કેટલામો પાનો છે?
એટલે આ તો ઓલું છઠાડામાં તેરમી આપણે ફિનિશ કરી હતી. ત્રીજી ધાર માં તેર એટલે મારી પાસે છે ને છે મંડલાની આ ખુલ્લું છે, ગુરુદેવ ના પ્રવચન વાળું ખુલ્લું છે.
અચ્છા અચ્છા,
એટલે જો એનો પેજ જોતો હોય તો તમને આપો, એનો પેજ 177 છે મારા પણ. એટલે એ તો આપણે આમ તો એ બધા જસ્ટ બધા થઈ ગયા ને આપણે, અંગ તો લાસ્ટ ટાઈમ સુધી અંગ બધા થઈ ગયા હતા.
અચ્છા,
જસ્ટ રીકેપ જ કરીશું. આઠ મદ આવવા જોઈએ, પછી
આઠ અંગ,
હા આઠ અંગ પછી આઠ મદ આવશે ને એના પછી. એટલે તેર નો સેકન્ડ પાર્ટ
મળી ગયા.
હેલો,
હા હા,
અનુભવજી ડ્રોપ થઈ ગયા ને?
હા, ઓ તમે નતા તે સાંભળતા? નહીં, ડ્રોપ થઈ એટલે એકે મને પાછા કનેક્ટ કેમ બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હતું.
ઓકે ઓકે ઓકે, ના મારે છે ને એક્ચ્યુઅલી હું ટ્રાવેલ કરું છું ને ભાનુબેન, એટલે આઈ એમ નોટ લિસનિંગ ઇટ કન્ટિન્યુઅસલી, એટલે મેં હમણાં હું કરું છું હમણાં પાછું. એક સેકન્ડ,
એક મિનિટ સચિનભાઈ. પ્રીતિબેન,
હા બોલો. જય જિનેન્દ્ર ભાનુબેન.
આઈ કેન ડ્રિંક, હું લઈ શકીશ ભાનુબેન, હું બી છું.
ઓહ, તો અંકિત તમે રાઈટ, તમે કનેક્ટ કરો ને અંકિત અનુભવજીને, સી ઇફ યુ કેન. સચિનભાઈ ટ્રાવેલ કરે છે ને એટલે.
હા હા હા, એટલા માટે છે. એટલે સચિન ડોન્ટ વરી, હું છે ને આઈ કેન ટ્રાય ટુ બ્રિંગ હિમ. ઓકે, સો જસ્ટ ગિવ મી અ ક્વિક 1 સેકન્ડ, હું એમને કોલ ટ્રાય કરું. રાઈટ, પ્રીતિબેન પણ છે એટલે વી
આર ગુડ. સોરી બધા, મને એમ કે સચિનભાઈ સાંભળ્યું એટલે.
હેલો,
હા
હેલો હેલો અનુભવજી. હા અનુભવજી,
ઓકે. અંકિત વોઝ ઓલસો ટ્રાઇંગ ટુ જોઈન પણ એનીવે આવી ગયા છે, હવે ચાલ લેટ્સ કીપ ઇટ.
ઓકે ઓકે, તો હું ટ્રાય નથી કરતો હવે. અનુભવજી આવી ગયા ને?
હા હા, આવી ગયા અંકિત. મને એકચ્યુઅલી મારો ફોન ત્યારે જ ડિસ્કનેક્ટ થયો, ભાનુબંધી બેન કંઈ કહેતા હતા, પછી મેં એકચ્યુઅલી અનુભવજીને ફોન કરીને કોન્ફરન્સ કર્યો છે.
ઓકે, ધેટ્સ ઓલ.
લગભગ તો પ્રોબ્લેમ નહીં થયો જોઈ.
અને ડિસ્કનેક્ટ સેમ, આઈ વિલ કનેક્ટ. સો નો વે.
હા હા, ઓકે ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, થેન્ક યુ.
હા હા, અનુભવજી શરૂ
કરતે. હા, તો अभी हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आठ मत, आठ प्रकार के जो घमंड होते हैं, मान होते हैं, जो समय दृष्टि के नहीं पाए जाते, उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं. 13th छंद है इसका, उसकी लास्ट की दो लाइनें हैं. पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने मदना रूप को मदना ज्ञान को धन बल को मद भाने तप को मद न मदजु प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो ये ही दोष वसु समकित को मल ठाने। मद यानी कि मान घमंड राइट। और हाँ। यहाँ पर जो घमंड की बात है वो अनंतानुबंधी कषाय के साथ होने वाले घमंड की बात है राइट। क्योंकि ऐसे तो मान बहुत आगे तक जाएगा अभी, ठीक है, संचलन तक का भी मान रहेगा अभी आगे जाकर मुनि दशा में भी, लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय के उदय में घमंड होता है, मद होता है, मान होता है, वो आठ प्रकार के जो बहुत तीव्र कषाय युक्त मान होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव के नहीं पाए जाते। उसमें से सबसे पहला है देखिए कुल और जाति इनका मत, फिर रूप का, सुंदरता का, ज्ञान का, धन का और बल का, और तप का और प्रभुता का। ये आठ प्रकार के जो घमंड जनरली लोगों के देखे जाते हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर पंडित साहब कर रहे हैं। श्रीमद राजचंद जी ने बोला यदि इस पृथ्वी में मान नहीं होता तो मोक्ष ही होता राइट। तो सबसे पहले हम समझने के सामान्यतः कहा जाता है कि मनुष्य गति में मान की अधिकता होती है राइट। ऐसा क्यों और मान इतना ज्यादा गंभीर अपराध क्यों है? क्यों सम्यक दृष्टि के आठ दोषों के बाद, ये भी बताया 25 दोषों के अंतर्गत के सम्यक दृष्टि के आठ दोष नहीं होते, उसके आठ अंग होते हैं और साथ में उसके आठ मत भी नहीं होते, आठ प्रकार के घमंड नहीं होते। मतलब इससे पता पड़ता है घमंड कितना हानिकारक है, जो स्पेशली हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के आठ प्रकार के मान, आठ प्रकार के घमंड नहीं होने चाहिए। तो मद इतना बुरा क्यों है? हमने आठ प्रकार के क्रोध की बात तो नहीं करी, हमने आठ प्रकार की मायाचारी की बात भी नहीं करी और आठ दस प्रकार के लोभ की भी बात नहीं करी, जितने भी प्रकार के हो, बट मान की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात की जा रही है राइट। चार कषाय में से क्रोध की नहीं है, मायाचारी की नहीं है, लोभ की नहीं है, मान की बात है। और उसका फिर बाइफरकेशन है बकायदा कि आठ प्रकार के जो मद है ये सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं बाहर से देखने पर। तो ये मद की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों?
लोक में, ऐसे लौकिक में लोग इससे ही अपना बड़ापन मानते हैं और ये पर वस्तु है तो, और पर वस्तु में हम ममत्व भाव कर अपना बड़ापन मानते हैं तो इसलिए। और कोई बोलो, अंकित बोलो। हेलो,
डिस्कनेक्ट है क्या? नहीं,
अच्छा, आप हो, अनुभव की हो ना?
हेलो,
डिस्कनेक्ट
थी गया, लगे। ओके, हूँ लगा पाछो
लगाओ
या जे
सचिन भाई तो देखाई छे पण आई डोंट नो लुक्स लाइक
હેલો
હા
આવી જાવ બનુ
तो हम सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कशन किया था ये जो सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा चल रही है बाहर से लक्षणों की साइंस सम्यक दर्शन इसके है कि नहीं है ये साइंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे सम्यक दर्शन के अनात्मभूत लक्षण है बाह्य लक्षण है व्यवहारिक लक्षण है ये कोई सम्यक दर्शन के सच्चे लक्षण नहीं ऐसा नहीं है किसी को बिल्कुल भी घमंड नहीं हो तो वो सम्यक दृष्टि होगा राइट बाहर में कोई बहुत ही हम्बल बहुत ही अच्छे क्रिटिसाइंग नेचर का लग सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर से जो लक्षण दिख रहे हैं वो अंदर से उसके सम्यक की घोषणा करते हैं करेक्ट सम्यक दर्शन की जो पर्याय होती है वह सम्यक गुण की पर्याय होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है और उसको हम नहीं देख सकते राइट सम्यक किसके है किसके नहीं है और उसका एकमात्र लक्षण जो हम बनाते हैं वो होता है आत्मानुभूति सम्यक दर्शन मतलब सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान यानी उनकी अभेद श्रद्धा जिस पर सील लगाती है आत्मानुभूति तो जिसने आत्मा के स्वरूप का अनुभव किया है जिसने ज्ञानानंद रस को चखा है जिसने ज्ञान और राग में भेद ज्ञान करके भेद ज्ञान की प्रवीणता हासिल करी है मतलब वो जानता है कि आत्मा मैं हूँ और शरीर तो जाने दें रागादि ये सब भी मैं नहीं हूँ जो मेरी विकारी क्रियाएं हैं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ ऐसा जिसने भेद ज्ञान करके स्वरूप की खबर करी और स्वरूप का रस चखा वो हुआ सम्यक दृष्टि क्योंकि उसके ही दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम संभव है करेक्ट ये हुए निश्चय सम्यक दर्शन मतलब अंदर से जो निर्मलता दर्शन मोहिनी के क्षयोपशम से हुई अक्षय से उपशम से हुई वो सम्यक की निर्मल पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं अब हम देख रहे हैं कि हमें वो पर्याय तो दिखती नहीं और यदि हमको उस पर्याय का जानना हो तो उसके आगम में हेतु बोले कि हम उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति को देखें तो हमको पता पड़े और फिर बाहर में ये लक्षण बताए हैं कि जिसके वह आत्मा की उतनी सम्यक्त्व वाली शुद्धि होती है उसके आत्मा में आठ अंग प्रकट होते हैं और ये मद जो अनंतानुबंधे की तीव्रता में उसके उदय में आठ प्रकार की चीजें होती है ये मद आप अनंतानुबंधी के उदय में बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा अनंतानुबंधी के दो काम होते हैं उसके मतलब बहुत अनंतानुबंधी के अकेली क्या बोलते हैं जब सम्यक दर्शन के लक्षण बनाए जाते हैं तो सम्यक की घातक जो कषाय होती है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं राइट कोई अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक होता हो ऐसा नहीं है अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती तब सम्यक दर्शन होता है राइट बट सम्यक दर्शन का अवरोध करने वाला कर्म है दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति करेक्ट लेकिन सम्यक दर्शन के लिए दोनों कंडीशन चाहिए दर्शन मोहिनी कर्म का भी अंतरकरण रूप उपशम होना चाहिए और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का सद्वस्था रूप उपशम ये दोनों नहीं होंगे तो चौथा गुण स्थान तो नहीं होगा करेक्ट तो अनंतानुबंधी वाली दिक्कत बहुत बड़ी है उसमें तो अब बाहर के जब लक्षण हम बना रहे हैं तो मोटा मोटा जो लक्षण ये प्रसिद्ध करते हैं कि इस जीव की ये वाला घमंड है मतलब इसके भेद ज्ञान तो नहीं होगा करेक्ट देखो यदि मैं मानता हूं कि जस्ट बिकॉज मैं यादव हूँ राइट नैमिनाथ भगवान का जो कुल था वो यादव था और मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो नैमिनाथ भगवान के कुल का हूँ राइट और या फिर गुरुदेव श्री जिस जाति में हुए मैं उसी जाति का हूँ या फिर पंडित टोडरमल जी की जो क्लाइन चली आ रही है मैं उसका हूँ या मेरे पापा या मेरे दादाजी यहाँ पर बहुत बड़े राजा थे या यहाँ पर ये थे इफ आई हैव इस सब चीजों का थोड़ा सा भी मान है यदि मेरे पास मतलब ये क्या सिग्नल दे रहा है ये सीधे सीधे बता रहा है कि आई डेफिनेटली मैंने बिल्कुल भी विचार तो नहीं किया कि शरीर में हूँ कि नहीं हूँ। मेरा यहाँ पर जो जन्म हुआ है ये पहला जन्म है कि बहुत सारे जन्मों के बाद मैंने लिया, क्योंकि इसी जन्म की मेरी मम्मी की तरफ से या मेरे पापा की तरफ से, मेरी जाति से या मेरे कुल से, यदि मैं इस जन्म को बड़ा मानता हूँ, मतलब मुझे जन्म लेने में कोई शर्म नहीं है। और शायद मैंने ये विचार भी नहीं किया कि आत्मा अनादि अनंत है और ये जन्म मेरा कोई पहली बार हुआ है कि कई बार हो चुका है, इसका भी कोई विचार नहीं है। तो ये आठ प्रकार के मन को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो ये सिर्फ ये बताएंगे कि देखो यदि इसको ये वाला मन है, मतलब इसने भेद ज्ञान नहीं किया, इसको शरीर से या आपस के पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री से, संयोग से, नो कर्म से, इसको एकत्व बुद्धि है। और जिसके भेद ज्ञान और एकत्व बुद्धि भेद ज्ञान नहीं पाया जाता, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि पाई जाती है, उसको नियम से स्वरूप के प्रति सम्यक दर्शन नहीं होता, करेक्ट। तो हम ये बस इंफरेंस निकालेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि इसको अपने शरीर की सुंदरता का घमंड है, और वहां इंफरेंस निकलेगा मतलब ये शरीर को ही आत्मा मानता है, मतलब इसके सम्यक कैसे होगा, इसने भेद ज्ञान ही नहीं किया, तो वो पहले ही क्रॉस चेक हो गया, राइट। ये उस तरीके का इंफरेंस है, इसलिए इन आठ प्रकार के मदों को निकाला जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो दो मद है वो एक से है, एक जाति का और एक कुल का है। जो पापा का पूरी लाइन चली आती है, पापा के परिवार वाले होते हैं, पापा से दादा, चाचा, ताऊ, ये सारे लोग होते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारा कुल, जो पिता का गोत्र होता है। और जो मम्मी का गोत्र, जो मम्मी के मामा नाना जी लोग जो चले आ रहे हैं, वो पूरा पक्ष कहलाता है जाति, राइट। पापा का गोत्र कुल और मम्मी के गोत्र को बोलते हैं जाति, ठीक है। अब सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा आदमी, कोई ना कोई बड़ा पोजीशन होल्डर, कहीं ना कहीं आजकल के जमाने में बोले तो लाइक किसकी फैमिली में कौन पॉलिटिशियन है, कौन बड़ा ऑफिसर है, कौन बड़ा डॉक्टर है, राइट। तो ऐसे बोले देखे जाते कि अरे मेरे तो चाचा वहां पर आईएएस ऑफिसर है, राइट। और लाइक समबडी विल से कि नहीं नहीं मेरे तो वहां पर रिलेटिव्स हैं, उनकी बहुत पहचान है पॉलिटिक्स में, सो दे विल गेट इट डन, डोंट वरी, राइट। तो आपने जब भी सोशल डिस्कशन किए होंगे तो इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि सब सॉर्टेड है, उनकी बहुत पहचान है गवर्नमेंट में, वो सारे काम सब अप्रूवल्स करा लेंगे। कुछ लोगों को लगता है नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा रिच है और उनकी फैमिली का बहुत नाम है, तो वो सब निकाल लेंगे, राइट। एक चीज होता है फैक्ट, ये ऐसा है, और दूसरा होता है इस चीज का गुरूर होना, घमंड होना। सम्यक दृष्टि के जानकारी तो होती है, जैसे भरत चक्रवर्ती को पता है कि उनकी कितनी ताकत है, करेक्ट, हाउ पावरफुल इज ही, भरत चक्रवर्ती जानते हैं, राम भी जानते हैं, पवनंजय भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, ठीक है। इवन नमीनाथ भगवान भी जब युवराज अवस्था में, तो वो जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, और श्री कृष्ण वगैरह उनके ताकत के सामने कुछ नहीं लगते, वो जानते हैं और उनको उस ताकत का ज्ञान है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा इस ताकत के कारण नहीं मानते। हेलो, हेलो, उनका बड़पन, उनका जो जोर होता है, उनकी जो अपने आप को मानने की प्रभुता होती है, वो अपने आप को इस शारीरिक बल से या पारिवारिक बल से कि परिवार का कितना नाम है, उससे नहीं बड़ा मानते। कारण क्या है इसका? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग बातें आती है, मुनिराज कैसे अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, कोई मुनिराज हो इसलिए अपने आप को गौरवशाली नहीं मानते कि वो चलो यहाँ पर हुए या उनका परिवार ये था, वो मानते कि चलो हम कुनकुन आचार्य देव की आमाय में हुए, राइट। वो उस परंपरा में अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, महावीर भगवान गौतम गंभीर की परंपरा में हुए, ये उनका गौरव है। तो वो अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, तो वो परिवार से तो अपना परिचय रखेंगे नहीं, जैसे दीक्षा लेते हैं परिवार से सारे संबंध वो तोड़ देते हैं, तो उनका गौरव कहाँ पर हो जाता है कि हम कुंद कुंद आमनाय की मुनिराज है, अहोभाग्य हमारे कि हम इस मूल मार्ग में दीक्षित हुए और हमें कुनकुन गढ़धर गौतम गढ़धर जैसे दिग्गज आचार्यों की परंपरा में हम यहाँ पर दीक्षित हुए हैं। तो जैसे इस परिवार आदि का त्याग होने पर निराजों की पूरी गर्व लेने की परंपरा बदल जाती है, वो अब इससे नहीं देखते कि हम देखो इस सिटी में हुए या इस राजवंश में हुए या इस जगह पर हुए, वो कैसा मानते हैं कि हम मुनिराज की परंपरा में, हम दिगंबर श्रमण परंपरा में यहाँ से दीक्षित हुए, इस गौरवशाली परंपरा के हम इस पट्टावली में आचार्य मुनिराज दीक्षित हुए। ऐसे ही जिस चीज में आत्मानुभूति की होती है, जिस जीव को आत्मा का भान होता है, उसके भी शरीर से जो उसका परिचय है उसका मान उसके खत्म हो जाता है। वो परिचय शरीर से नहीं देना चाहता, अपने जाति कुल से नहीं देना चाहता, वो इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता कि देखो हम इस परिवार में जन्म लिया हमने और हमारे परिवार में ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए। वो किस लिए जाना जाता है अपने आप को, कि उसको अब पता है कि जन्म पहली बार नहीं हुआ है, अब उसको आत्मा की अनादि अनंत होने का, ध्रुवता का, उसके अस्तित्व का पक्का पता पड़ गया है। और चूंकि उसको पक्का पता पड़ा है तो आचार्य कुनकुन देव ने इसको शब्द दिया, नहीं ये कार्तिकेय स्वामी का है, नहीं नहीं किन्होंने लिया है, योग सार, मिटे जन्म लज्जा जनक पिए न जननी क्षीर। क्या कि जब एक बार वह स्वरूप को जान लेता है और आत्मा नित्य है और वह आत्मा मैं हूँ और इस आत्मा ने अनंत बार परावर्तनों के चलते जन्म मरण किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसी कोई आयु अवगाहना नहीं है जहाँ पर जन्म ना लिया हो और जन्म लेकर नहा देह ना छोड़ी हो। उसको जब ऐसा ज्ञान होता है तो वह इस जन्म को मान का कारण नहीं, लज्जा का, शर्म का कारण मानता है कि बताओ मैंने इतने जन्मों से इतने समय से कैसे शर्मजनक कार्य किया कि देखो तीर्थंकर अनंत अनंत होके चले गए, अनंत अनंत जीवों ने दीक्षा धारण करके आत्मित कर लिया पिछले अनंत काल में और मुझे यही जन्म मरण करते हुए अनंत काल बीत गया। तो उसके यहाँ पर इस जन्म से और इस जन्म के चिन्हों से, माता से, पिता से, उनके कुल से, उनके परिवार से उसको कोई भी मान होता नहीं है कि हम किस गौरवमयी कुल में जन्मे हैं। हाँ, उसको जैन दर्शन की गरिमा का बहुत मान है तो वो हमने उसको देखा ही उद्गूहन अंग में और प्रभावना अंग में। उपगुहन अंग में तो वो जैसे बने तैसी कोशिश करता है कि जैन दर्शन की कहीं भी हंसी ना हो, वह दोषों को ढक देता है जो ज्ञानी है या कोई साधर्मी जन है और उनसे भी कोई कार्य हो गया जिससे धर्म की हानि, धर्म की हंसी हो तो वह उसको ढक देता है। और प्रभावना में और वात्सल्य में और स्थितिकरण अंग में वो जैसे बने तैसे इस धर्म की और प्रभावना हो सके, सुरीतियों का बहुत प्रचार प्रसार हो सके, उसका प्रयत्न करता है। तो जैन दर्शन की इसके कारण कभी भी अवहेलना ना हो पाए, भगवान महावीर का ये कुल ये मेरा कुल है, ऐसे तो वह एकदम जागृत है कि मेरे से ये वाला कुल, मैं मुनिराज और भगवान महावीर की परंपरा में होने वाला, उनके मोक्ष मार्ग में चलने वाला साधक हूँ, मेरे किसी आचरण से मेरे महावीर भगवान और उनके द्वारा उपदिष्ट इस मार्ग का हसी, इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, छल ग्रहण करके या इससे कोई स्वच्छंद होकर मजाक ना उड़ाए, मेरे किसी आचरण से धर्म की हसी ना हो, ऐसा तो उसको भगवान महावीर के पंथ का बहुत मान और बहुत गरिमा है। लेकिन वर्तमान में जो उसको अपना कुल प्राप्त हुआ इससे उसका कोई परिचय वह लेता नहीं है। ये दो तरीके का हुआ, राइट? आपको ये बड़ा ओल्ड फैशन लग रहा होगा कि किसको ऐसा होता है कि हमारे कुल में राजा थे, हमारी मम्मी के फैमिली में इतने वो है,
बट ऐसा हम करते हैं जैसे कि इंडिया में बहुत होता है इन्हीं मम्मी पापा का बेटा यदि बाहर पढ़ने चला जाता है या बाहर कहीं काम करता है तो मम्मी पापा को बड़ा प्राउड फील होता है। किसी के फ्रेंड्स इवन फ्रेंड्स भी यदि कहीं पर हो एंड दे आर इन गुड पोजीशन तो हमेशा एक वो रहता है किसी का फ्रेंड यदि पुलिस में कोई बहुत हाई पोस्ट पर हो राइट तो उसका थोड़ा रॉब अलग हो जाता है। किसी के अच्छे कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ हो तो उनका एकदम चलना फिरना बैठना उतना अलग टाइप का हो जाता है। एवरी टाइम यू नो वो वाली चीज हाईलाइट की जाती है एंड देन आप एडवांटेज को ऑलवेज
आजकल जो बच्चे बड़े पढ़े लिखे होते डॉक्टर होते वगैरह तो भी पेरेंट्स वो उससे बोलते हैं कि मेरा बच्चा ये है तो उससे गौरव।
हाँ करेक्ट तो ये दूसरों से अपने आप को बड़ा मानना जस्ट बिकॉज कोई है मतलब उससे कुछ है नहीं क्योंकि जब हम अन्यत्व भावना का स्वरूप दिखते हैं बहुत अच्छी बात सुभाषित रत्न संदोह है सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ है मध्वितीय आचार्य का नीति का बहुत सुंदर ग्रंथ है तो उसका पहला जो अधिकार है उसमें विषय विचार किया वहां पर आचार्य ने कि विषयों का क्या स्वभाव है तो उसमें उन्होंने खेद प्रकट किया कि देखो मुझे जगत की मूर्खता पर खेद है कि इसके माता इसके पिता इसके पुत्र इसकी पत्नी इसका धन वैभव जब ये मरता है तब इसके साथ एक भी वस्तु ये नहीं जाती फिर भी जीते जी उनके लिए ये प्रयत्न करके व्याकुल रहता है कि मैं इनको ठौर ठिकाने लगा दूं लेकिन अहो खेद है कि जो इस आत्मा के साथ जाता है ऐसे धर्म में इसकी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं होती जो इसका मित्र है धर्म जो इसके साथ जाएगा मृत्यु के बाद भी उसमें ये कुछ प्रीति नहीं करता लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष में इसको यही छोड़कर चले जाते हैं या ये स्वयं जिनको छोड़ के चले जाता है उनसे इसकी प्रीति है। तो ये जो हमारे परिवार में जो कोई भी लोग हैं यदि अभी मृत्यु की तो बात की बात है अभी मुझे कोई रोग हो गया इफ आई एम डायग्नोज विद एनी लाइक मेरी किडनी चली गई मेरे लंग्स खराब होने लगे या मुझे कोई कैंसर हो गया कुछ और हो गया राइट ये लोग क्या कर पाएंगे एक बार किडनी देने में भी जोर पड़ेगा किसी को राइट फिर बोलेंगे नहीं कहीं डोनर बाहर देख लेते हैं कुछ और कर लेते हैं राइट सो आई मीन सामने प्रत्यक्ष एक छोटा सा बच्चा होता है मम्मी पापा वो रो रहा होता है उसको शांत कराने के लिए उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उसको वेदना हो रही वो ले नहीं पाते बस अलग अलग उपाय करते हैं। तो इस बाहर के जितने भी परिवार कुटुंब से हमारा परिचय इनसे अपने आप को बड़ा देखना ये पागलपन ही है उनके बड़े हो जाने से कोई मतलब हमको होता नहीं हमें कुछ फायदा होता नहीं वो बड़े थे आपकी के मेरे दादा के दादा के दादाजी बहुत बड़े राजा थे होंगे अभी तो पोजीशन इसके आई एम नॉट इवन इन मिडिल क्लास अब मैं क्या करूं अब उनके राजा होने से मुझे क्या फायदा है क्या फायदा होगा मुझे बट नहीं जी हम तो ऐसे थे हम इस शहर के बहुत बड़े जमींदार थे और जब ये थे और ऐसा भी कई लोगों को हमारे घर गुरुदेव श्री खाना खाने आए थे उस टाइम हमने गुरुदेव श्री को खाना कराया था राइट ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटली गुरुदेव श्री क्या कहते हैं घर पर कोई स्वाध्याय का शायद माहौल ना हो गुरुदेव श्री के प्रवचन भी ना सुने जाते हो बट हाँ गुरुदेव श्री तब आए थे और ये होता था और ऐसे हमारे दादाजी ने ये कराया था राइट तो वो वाला मान फिर किस काम का राइट ये वाली चीजें सारी अलग अलग तरीके से मद में कि मेरे दादाजी वहां पर सौ धर्मेंद्र प्रतिष्ठा में बने थे उन्होंने मंदिर बनाया था अब हम स्वयं मंदिर ना जाए हमारे मंदिर के ठिकाने नहीं हो तो ये वाला मान किसी काम नहीं आता प्लस उन्होंने किया था तो हम क्या कर रहे हैं ये वाली बात तो ये सारे मान यदि हमको मान हो तो जैनत्व का हो कि देखो हम इतनी नीच परंपरा में इतने उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं कि हमको पता पड़ा कि जीव कौन है आश्रम बंध क्या है कर्मों का क्या स्वरूप है कैसे संसार चलता है नित्य नैमित्तिक संबंध क्या है क्रमबद्ध कैसे पूरा जगत बंधा हुआ है जब इतना सब कुछ ऊंचा हमको पता है तो अब हमें इसका मान हो कि देखो हमारी इतनी ऊंची गरिमा है, अब हम छोटे छोटे सहयोगों में नहीं रोएंगे, नहीं तो हमें जगत बताओ फिर क्या हमारी इज्जत रहेगी। इतना कुछ जान के भी यदि हम छोटी बातों में विचलित हो जाएंगे तो हमारी क्या गरिमा रहेगी। तो इस बात का हमको मान हो कि हमें उत्कृष्ट तत्व ज्ञान की पूरी इज्जत बनाए रखनी है, हमको निरंतर भेद ज्ञान करना है। हम भेद ज्ञान से रिचित हो जाएंगे तो वैसी होगी, बताओ ये सब कुछ जानते थे और अब ऐसे पागलों जैसे घूम रहे हैं, करेक्ट। तो ज्ञानियों को इस चीज का मान नहीं होता कि उनके परिवार में कौन कितना कहां बड़ा है, उनकी कितनी कहां पहुंच है। हाँ, उनको संदेश की आज्ञा का भंग हो जाने का इतनी उनको डर है और इस मान को वो बनाए रखते हैं कि नहीं हमसे गलती से भी ये वाली इज्जत ना टूट जाए कि हमसे जिनाज्ञा भंग हो गई, हमसे जैनत्व का आचरण छूट गया, ये वाली कमी ये वाली छूट वे अपने आप को नहीं देते, ठीक है। तो जिसको ये वाला मान है मतलब उसको आत्मा के अनादि अनंत होने का, और जो अभी मनुष्यत्व में हम पैदा हुए तो हम किसी नाली में भी कीड़े हुए, हम किसी कुत्ते के पेट से भी जन्मे मतलब कुत्तों के भी पुत्र हुए, हम सांप के बेटे हुए, हम सुअर के बेटे हुए, इल्लिया हुए, मकोड़े हुए, तो तब का कुल क्या काम आता होगा, तब भी तो हम किसी के कुल में ही जन्म लिए थे। तो ये कुल का मत करना, ये किसी काम का नहीं होता, ठीक है। ये कुलादि की परंपरा तो अभी ये कर्म भूमि में ही है, देव और नरक गति में कुल जैसा कुछ होता नहीं, उपाशिया पर जन्म होता है। और भोग भूमि में भी जो पुत्र होते हैं युगल में जन्मते हैं, वो लोग भी शुरू शुरू की उत्तम भोग भूमि में तो अपने मम्मी पापा को देख भी नहीं पाते, आखिरी आखिरी में जब भोग भूमि नष्ट होने लगती है तो धीरे धीरे माता पिता देखते हैं और फिर डर जाते हैं क्या हो गया थोड़े थोड़े काल के लिए, बट जन्म लेते ही वो लोग का मरण होने लगता है। तो ये जो कुलादि की परंपरा ये कर्म भूमि की स्पेसिफिक है कि हाँ हमारे मम्मी पापा ये, हमारे दादा दादी ये, और उनका नाम ये और उनका ये, बाकी बहुधा तो ये वाली व्यवस्था जगत में देवगति में ऊपर है नहीं, नरक गति में है नहीं, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी पंचेंद्रिय, इनको फर्क पड़ता नहीं, इनका कोई दिमाग इतना है नहीं, विचार शक्ति है
पंचेंद्रिय। देवगति में वैसे वो छोटा बड़ा वैसे होता है, कुल परंपरा नहीं होती
छोटा बड़ा, हाँ तो वहाँ पर कुल से नहीं होता कि हम सॉरी इनके पुत्र हैं, उनकी वहाँ कल्पनाएं होती है, उनको कल्पोपपन्न कहते हैं। तो वहाँ पर आप छोटे देव बने, हीन देव, तो आपका जन्म दूसरी जगह पर हुआ, तो आप छोटे इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके पापा लोग गरीब है या आपके पास पैसा नहीं है, नहीं वहां पर कोई गरीब नहीं होता। हाँ, आपसे ज्यादा समृद्ध दूसरे देव हैं, तो कोई भी देव ऐसा नहीं है जिसके पास साधन कम है। हाँ, ऐसा जरूर है कि बाकी के देवों के पास साधन ज्यादा है, और क्योंकि वो उनकी पोजीशन छोटी है कल्पना में, जैसे वो जो सौदर्विंद्र के सैनिक होते हैं कोई उनमें बन गए या कोई प्रजा में बन गया, तो अब वो क्योंकि उनकी पोजीशन छोटी है तो वो अपने आप को छोटा मानते हैं, तो वहां ईर्ष्या है, मद है, लेकिन उनको इस चीज का मद नहीं कि हमारे इधर इधर ये हुए, पोजीशन का हो सकता है कि अरे बताओ सोलर में इतना बड़ा और हम इतने छोटे, वो वैभव का मद में आएगा, रूप के मद में आएगा, आयु कितनी लंबी कितनी नहीं, वैभव कितना है कितना नहीं, हम सोलर में इंद्र है कि नहीं है, कि हम क्या है, हम व्यंतर है तो कौन से है, किलबिश है क्या है, इस तरह का। बाकी फैमिली की जो क्या बोलेंगे
तो देव लोगों में वैसे कुल और जाति का मद नहीं होएगा, ऐसा बोल सकते,
मतलब हाँ एंसेस्ट्रल जो होता है वो नहीं होगा, विषम हाँ। का हो सकता है कि चलो हम इतने बड़े, हमारे अंदर में इतने मेहमान है, हमें ये है, हमारे अंदर इतने लोग इतने देव आते हैं, ये वाला मद हो सकता है, बट एंसेस्ट्रल एज इन की इनके माता पिता ही नहीं है,
हाँ।
उनको वैसा कोई मत नहीं होता, ऐसे नारकियों के तो समय ही नहीं है सब सोचने का, जन्म लेते ही साथ उनकी इतनी पीड़ाएं हैं, और एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक इतना विचार नहीं है, संगी पंचेंद्रिय में भोग भूमि में ये व्यवस्था नहीं है, जन्म लेते ही साथ माता पिता का परिचय नहीं होता, माता पिता मर जाते हैं, ये युगल हाँ। के रूप में जन्म लेते हैं, तो बच्ची कर्म भूमि वो भी संगी मनुष्य और त्रियंश,
हाँ।
ठीक है, और उसमें भी त्रिवेंशवती में तो कोई नियम कायदा है नहीं, क्या माता क्या पिता, वहां पर कोई शादी वगैरह की या कोई ऐसी कोई परंपराएं चलती नहीं है, तो त्रिवेंशवतियों में भी इसका कोई नियम कायदा इस सच नहीं है कि कहा माता बच्चे बस बच्चे थोड़े बड़े हुए छोड़ दिए जाते हैं, मम्मी पापा के साथ गाय को रहना नहीं होता है, गाय के बच्चे गाय के साथ हमेशा रह नहीं पाते, ऐसे घोड़े इन सबके अलग अलग हो जाते हैं, करेक्ट। तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य गति में ही हमारी कर्म भूमि में ही ये सारी बात चलती है, और इसी के ऊपर फिर गोत्र, ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र, कुलीन आचार आर्याचार अनाचार अनार्याचार, ये वाली बात, सप्त व्यसनी आर्याचरण करने वाला सदाचरण करने वाला, चारित्र से भ्रष्ट, चारित्र के साथ ऊंची क्रिया वाला नीची क्रिया वाला, ये सारे भेद यहाँ पर फिर बनने लगते हैं। ये सारे इसमें आएंगे पिता और माता के जाति से जो होता है। हाँ, बाकी इसका फर्क निमित्त नैमित्तिक को संबंध है कि नहीं है, कि हाँ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है कि माता और पिता, जैसे कि कैसे फर्क पड़ता है इससे, जो हमारा पुण्य पाप का उदाहरण है, एक वेश्यान के दो पुत्र हुए, एक वेश्या ने खुद को पाला, वेश्या ने खुद पाला और एक ब्राह्मण के यहाँ पला, राइट। अब दोनों पुत्र है तो एक वेश्या के, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, बराबर। एक के कुछ भी आचरण अच्छा नहीं है, दूसरा एकदम आचरण में पारंगत है। तो ये जो कुल की परिपाटी चली आती है, हमारे घरों के संस्कार होते हैं, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है कि आपके घर में क्या होता क्या नहीं होता। बचपन से ही बच्चों को मंदिर ले जाया जाता है, रात में नहीं खिलाया जाता होगा, और कई घरों में वही पापा साथ में बैठे बच्चों के सामने शराब पीते होंगे, स्मोक करते होंगे, राइट। तो लाइक यू नो ऑल इन द पंजाबी फैमिली एकदम साथ में थिंकिंग कल्चर होता है, कोई ऐसी भी नहीं होती बेटा बस यही हो जाए आपकी, फिर आपको भी यही करना है, राइट। तो हर एक फैमिली की अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग टाइप की होती है, तो वहां पर ऊंचा कुल और नीचा कुल निर्धारित होता है कि इनका आचरण कैसा है। तो माता और पिता का कैसा आचरण और किस परिवेश में वे पली, उससे बहुत कुछ ये डिसाइड करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होगी, हमारे कौन सी आदतें होंगी, कौन से गुण होंगे, बराबर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दादा दादी कोई बहुत बड़े धर्मात्मा थे तो मैं भी बहुत बड़ा धर्मात्मा होंगी हूँ, नहीं, वो थे ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्वयं अच्छा बनूं, उनके अच्छे होने के कारण मैं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है।
हाँ।
किसी दूसरे के कारण अपने को बड़ा देखना, ये वाली बात सम्यक दृष्टि के नहीं होती, मैं दूसरों से अपने को बड़ा नहीं देखता, और इस भव के कारण तो बिल्कुल नहीं, जो जन्म कलंक है, शर्म का कारण है, उससे अपने आप को बड़ा दिखेगा तो उसने फिर क्या विचार किया, उसने ना लोक का विचार किया, ना एकत्व भावना का, ना अन्यत्व भावना का, ना अशरण भावना का, ना अनित्य भावना का, ना संसार भावना का, बराबर। संसार भावना में जब हमने पढ़ा था तो 18 नाते की कहानी इसी में तो पढ़ी थी कि हम किसका मत करें, एक एक से तो हमारे कैसे नाते हैं, पूर्व भव की पुत्री हो वो इस भव में पत्नी बन जाती है, अगले भव में वही माता बन जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पर किस चीज का मत करें, सब कुछ एकदम डरावना और भयंकर है। ये दो प्रकार के मत सम्यक दृष्टि को नहीं होते, मतलब जिसको है मतलब उसके सम्यक दर्शन तो डेफिनेटली नहीं है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है, अब ये वाले मत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रॉसली हमारे अंदर बैठे हुए हैं। मदना रूप को, मदना ज्ञान को, धन बल को मद भाने, चार प्रकार के मत, रूप का, ज्ञान का, धन का और शक्ति का, बल का, ठीक है। सबसे पहले रूप मत, ये आज के इंटरनेट के युग की सबसे बड़ी देन है, राइट, सौंदर्य का, सेल्फ ऑब्सेशन का, अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाने का। तो नाउ लाइक एवरीवेयर यू हैव ऑल दीज फेक थिंग्स, आपके पास इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली फोटोज अपलोड हो रही है सारे फिल्टर लगाकर, फेसबुक पे कॉन्स्टेंटली आपकी कैसी है, आपकी शादी हो रही है तो प्री वेड का पूरा शूट फोटोशूट है, ताकि यू नो एक सब कुछ ड्रीमी हो जाए, एकदम जैसा फिल्मों में होता है वैसा आपकी लाइफ हो। आप यदि कहीं पर घूमने जा रहे हो हिल स्टेशन पर, तो यू नो एक DSLR कैमरा या एक हाई क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए और उसमें एकदम प्रॉपर पोजेस बनाकर सेल्फी एंड ऑल सो दैट वी कैन अपलोड एक DP से सब कुछ कर पाए राइट. आपकी मतलब लिंक्डइन की प्रोफाइल जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, आपके पास स्नैपचैट है, यूट्यूब है, एवरीवेयर हम प्रेजेंटेबल होने के चक्कर में इतना खो चुके हैं कि पहले जैसे कि हम अभी आप कहीं शिविर में पंचकल्याणक में भी जाओगे तो लाइक सॉरी वस्त्रापुरम पंचकल्याणक चल रहा है राइट, जन्म कल्याणक हुआ अगले परसों. नाउ यदि मैं भगवान का जन्म देख रहा हूँ, भगवान का जन्म और आसन हिल रहा है, तो आप भगवान के जन्म को देखना छोड़कर पीछे एक बार दृष्टि घुमाएंगे तो आपको दिखेगा बाकी लोग जन्म नहीं देख रहे हैं भगवान का, मोस्टली लोग जन्म को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट. एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक देयर ओन पिक्चर ऑफ एवरी इवेंट. आप कहीं जा रहे हैं आप सबसे पहले उस चीज को एडमायर नहीं करेंगे, आप पहले अपना फोन निकालेंगे और फोटो देखेंगे, पहले फोटो लेंगे, चलो यहाँ की फोटो ले लेते हैं राइट. तो इन दिस हेस्ट हम इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हम क्या चीज क्यों चीज किस लिए कर रहे हैं वी हैव टोटली फॉरगॉट दिस एज हम एज इन आज की जेनरेशन राइट. तो ये एक जो सेल्फ ऑब्सेशन का सेल्फी का कल्चर पूरा हमारे पास आ गया. यू हैव लाइक जैसा भी हो आपकी फोटोज बेस्ट जानी चाहिए, आप रियल लाइफ में कैसे भी हो कैसे भी रहो, आपकी सोशल मीडिया पर जो आपकी अल्टरनेट लाइफ है एक मिरर लाइफ आप अपनी बनाना चाहे तो जैसे वो है नहीं, इट हैज टू बी ग्रेट. अब इस रूप मत से क्या होता है तो यदि हम करना नहीं उससे समझे तो शरीर की सुंदरता का मत करने से तीन चीजें होती है. सबसे पहले एक तो प्रेम को ऊंचा देखने के कारण नीच गोत्र का बंद होता है, सबसे पहली बात है. सुंदर दिखने से नाम कर्म की अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है. एक है उसमें से अशुभ प्रकृति जिसके कारण हमको शरीर के जो अंग है वो उल्टे सीधे शेप में प्राप्त होते हैं, हाथ पैर आंख नाक कान ये सब अच्छे शेप में प्राप्त नहीं होते ठीक है. और एक होती है विभक प्रकृति, मतलब एक सुभग और एक विभक. तो लोग आपको पसंद नहीं करते फिर, तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत सुंदर हो बट लोग उनको पसंद नहीं करते. हेलो
दोबारा बोलेंगे मैं लिखती थी मगर लिखा नहीं गया मैं. हाँ पहले तो स्वयं को ऊंचा देखने से नीच गोत्र मिलता है आपने बोला.
आत्म प्रशंसा पर निंदा ही नीच गोत्र के बंध का कारण है. तो जितना हम जितनी बार अपने आप को आईने में या फोटोज में दिख के निहारते हैं उतनी बार हम अपने आप पर मोहित होते हैं, हम उतनी बार रिडीम करते हैं आत्म. हम किसको शरीर को अपना मान रहे हैं राइट, और शरीर से अपने आप को सुंदर मान रहे हैं. ऐसा है मलमूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा तुझे पड़ा उठा के धरना है. तो वो क्या फैक्ट्री है जिसमें पूरा मल बनता है, जिसमें मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं बनता है, या फिर बनता है तो हड्डियां बनती है, खून बनता है, पीस बनती है, कफ बनता है राइट, हेयर बनते हैं, नाखून बनते हैं, ये सभी तो बनता है शरीर में. अच्छा क्या बनता है शरीर में, कुछ भी नहीं करेक्ट. हाँ एनर्जी बनती है तो एनर्जी मिलती है जिससे हम सारे काम कर पाते हैं राइट. वो कंज्यूम करता है तो बेसिकली मशीन है ना, तो मशीन का बाय प्रोडक्ट क्या है कि वो मलमूत्र खून वगैरह निकाल के दे देता है. तो इसमें सुंदर जैसा तो कुछ भी नहीं था. यदि इसकी चमड़ी बस हटा दी, हटा ही क्या जाए, आपको थोड़ा सा छिल जाए तो आपको पता पड़ जाता है कैसा दिखने लगता है. थोड़ा सा छिल जाए कहीं से भी तो पूरा लाल लाल पिंक पिंक दिखता है मांस पहले, फिर उसमें ब्राउन कलर की पपड़ी आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो हील होकर होता है. करे तो इसमें बस एक ऊपर पतली परत पड़ी हुई है स्किन की, जिसके कारण ये हमको बहुत बड़ा इल्यूशन है कि नहीं नहीं ये बहुत सुंदर है, उसका कितना प्यारा शेप है, फेस है, फेस कट है, बॉडी है, कलर है, कितना यंग दिखते हैं, कितना अच्छा सब कुछ है, कंपोज्ड है. ये सारी जितनी भी चीजें एक टेम्परेरी है, जितना भी आप इसके बारे में पकड़ोगे करोगे जितना भी रोकोगे ये वाली चीजें नहीं होगी, ये इसका इस शरीर की सुंदरता नहीं रहने वाली. आपको यदि यकीन नहीं होता तो आप अपने जमाने के आप लोग के जमाने के भी तो अलग अलग रहे होंगे ना, जब आप लोग अपने 20s में होके तब भी बॉलीवुड तो था ही, उस टाइम भी आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस रहे होंगे करेक्ट. करेक्ट, उनकी फोटो अभी उनको भी देख लीजिए, जस्ट गूगल सर्च के वो कैसे दिखते हैं, क्या वो उतने ही सुंदर उतनी खूबसूरत है, क्या आप उनके जैसा दिखना अभी भी चाहते हैं? वी नेवर वॉन्ट लाइक आप, ये दिस इज समथिंग, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. बट हाँ, इस इल्यूजन में पढ़कर हम तीन बुरे काम करते हैं. पहला, ये बहुत बाहर की बात बता रहा हूँ, जो बाहर का आउटराइट दिखने वाला घाटा है वो ये. पहला, इससे नीच गोत्र का भेद होता है क्योंकि आत्म प्रशंसा में ये आ जाता है, ठीक है. दूसरा, इससे अशुभ नाम की जो नामकर्म की प्रकृति है, दो है, शुभ और अशुभ नाम की नामकर्म की प्रकृतियां है. शुभ नामकर्म की प्रकृति, शुभ नामनक नामकर्म की प्रकृति से क्या होता है, शरीर के अंग और अवयव जो होते हैं वो सुंदर शेप में बनते हैं, जैसे कि महापुरुषों के होते हैं, पूरा हर एक अंग एकदम प्रॉपर, जितने हाथ जितने पैर समचतुर संस्थान वगैरह में जो होते हैं. और अशुभ से शरीर के अंग उल्टे सीधे शेप में बनते हैं, किसी का पेट बड़ा होकर निकल कर आ रहा है, किसी की नोज चपटी है, किसी के ईयर्स बाहर निकले हुए हैं, राइट. ये सब अशुभ नाम कर्म से होता है, ठीक है. तो शरीर का बहुत श्रृंगार करने से अशुभ नामक नाम कर्म का बंद होता है, जिससे शरीर को कुरूपंग मिलते हैं. आप जितना अपने आप को सजाओगे उतना ज्यादा, ये एकदम प्रैक्टिकल, इसका फल हम अभी देख लेते हैं. कोई एक्सेसिव मेकअप कर लेता है तो उसकी बॉडी पर रिएक्शन आने लगते हैं, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी दिखते हैं. आप ज्यादा डेली शैम्पू वगैरह भी करते हो, कंडीशनर करते हो, तो आपके बाल जल्दी से टर्न होने लगते हैं, व्हाइट होने लगते हैं या झड़ने लगते हैं. और आप बहुत ओवर मेकअप करते हो तो आपकी स्किन उतने जल्दी झुर्रियों को लेकर आ जाती है, उतने रिएक्शन होते हैं, करेक्ट. तो ये सब उसी कर्म के उदय के अंतर्गत आता जाता है. द मोर यू ड्रेस अप, ज्यादा ज्यादा आप सजाएंगे, अशुभ इसीलिए फिर श्रृंगार का सीधे सीधे उससे संबंध है. और तीसरा, एक विभव होता है, एक सुभग होता है कर्म, जिससे कोई कैसा भी हो सबको वो बहुत प्यारा लगता है, ठीक है. आप उसकी संगति करना चाहते हो, आप मतलब वो सुंदर नहीं हो तो भी आप उसके साथ रहना चाहते हो. और विभव नामक नाम कर्म के उदय में क्या होता है, आप कितने भी सुंदर हो लोग आपके आपको पसंद ही नहीं करते, आपको देख के उनको गुस्सा आती है, वो आपके पास ही नहीं रहना चाहते, करेक्ट. तो ऐसा आपने देखा होगा, जो लोग बहुत सुंदर होते होंगे और उनको अपनी सुंदरता का बहुत गुरूर होता होगा, उनके पास ज्यादा लोग खुद ही नहीं जाना पसंद करते. Have you ever seen it? आपने नोटिस किया होगा, जो बहुत सुंदर लोग होते हैं ज्यादा, उनके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हो पाते, जिनको घमंड होता है वो. हेलो, हेलो, करेक्ट. ऐसे आपने नोटिस किया होगा, वो सीधा सीधा काउंटर उदय है, वो विभव नाम का नाम कर्म होता है. इसलिए ज्यादातर सुंदर लोगों की नॉर्मल लोग ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करते हैं, अरे नहीं वो तो बहुत लच्छेड़ी है, वो लोग तो अलग ही आसमान पे रहते हैं, नहीं 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 दैट्स व्हाट हाउ पीपल टॉक. क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रगट में विभव नाम कर्म का उदय है, कि आप कितने भी सुंदर हो लेकिन एक जो ऑरा होता है लोग आपको अपने आप पसंद करें, वो फिर नहीं हो पाता, क्योंकि आपको उस पर घमंड है जो भी आपके पास है, करेक्ट. तो ये रूप का मत है, लेकिन यहाँ पर इन डिसएडवांटेज के कारण सम्यक दृष्टि ये वाले मत नहीं करता, ऐसा नहीं है. उसको इनका नहीं करने का मोटिवेशन कोई और है, उसकी अपने आप छूट जाता है. क्यों छूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर में नहीं हूं. चूंकि शरीर में नहीं हूं तो पहली बात तो कि मैं आत्मा हूं, तो शरीर से जो मैं हूं ही नहीं. मेरे मोहल्ले में एक बहुत प्यारा घर है, अब मैं खुश होता रहूं यार मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छा घर है, अरे मेरा नहीं है वो, दूसरे का कितना भी अच्छा हो मैं क्या करूं उससे. तो ऐसे ही नोज के, ठीक है शरीर बहुत सुंदर होगा बट वो मैं नहीं हूं, तो मैं उसका क्या घमंड करूं, पहली चीज. दूसरी, कि उसको निरंतर 12 भावनाओं के चिंतन में अशुचि भावना से शरीर का सच्च स्वरूप पता है, तो वो शरीर से भेद ज्ञान करता है, शरीर से विरक्त है. और यदि श्रीमद राजचंद्र जी के शब्दों में बोले कि भाई जो अनादि काल का शत्रु है वो अपनी हाथ में आया है, तो अब तो उससे बदला लेने का अवसर है, तो वो उस शरीर से शत्रु से प्रीति कैसे करेगा, अब तो वो उससे विरक्त होकर जितना हो उतना यम नियम संयम से उस शरीर को तप में तपाएगा, अपने वैराग्य की वृद्धि करेगा, कर्मों की निर्जरा करने का प्रयत्न करेगा. तो इसके लिए ज्ञानी जीवों के अपने आप, क्योंकि भेद ज्ञान है, तो शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर को अपना नहीं मानते, तो फिर शरीर सुंदर हो या कुरूप, इसका उनको प्रश्न ही नहीं, विचार ही नहीं, वे मस्त रहते हैं स्वरूप आत्म की मस्ती में, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा प्रेजेंट इंटरनेट का, सोशल मीडिया का एक पूरा भयानक वाला युग चल रहा है, जिसमें यू नो डिप्रेशन, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउट, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लो होते जा रहे हैं डे बाय डे, यंगर जनरेशन का। आप एक बस कोई ने बहुत सुंदर फोटो डाली, एंड जस्ट कमेंट यार मजा नहीं आया, ये यू कमेंट की नॉट लुकिंग, दिस कुड हैव, यू कुड हैव डन बेटर, या कुछ भी आप ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट कर देंगे, दैट पर्सन वो पूरे टाइम यही सोचता रहेगा यार उसने ऐसा क्यों बोला, तो इधर वो फिर वो चेंज करके दूसरी डाले, मतलब हम पूरा अपना वैलिडेशन दूसरों से लेने लगे हैं, राइट। तो दिस इज द कल्चर दैट हैज कम फॉरवर्ड की, ठीक है आप कहीं भी जाओ, ये हर जगह घूम रहा है और, राइट। तो कोई भी प्रसंग क्यों नहीं हो, पंच कल्याणक का हो, शिविर का हो, राइट। पहले गुरुदेव श्री के शिविरों में अपन देखें, पुराने फोटोज देखते हैं, सबकी ड्रेसेस, सबकी वेशभूषा कितनी सादगी भरी, क्योंकि वो सब जिनवाणी तो थे, राइट, तब तो चर्चाएं होती थी। अब हम पंच कल्याणक इवेंट्स देखते हैं तो एकदम फैंसी ड्रेस हो जाता है, बिल्कुल सबको एकदम सजा धजा उठबूट के साथ देखना होता है,
तभी सेलफोन नहीं थे, अभी सेलफोन आए तो क्या है कि वो पिक्चर्स इंस्टेंटली ले लेते ना लोगों,
करेक्ट, एकदम हर एक इवेंट को एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो लाइक नाउ वी हैव, वो हम इतने बड़े ट्रैप में आ गए हैं कि हम ना उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, हम ना उस मोमेंट को देख पाते हैं अच्छे से, हमें बस ये कि मेरे फोन में अच्छा फोटो आ जाए। तो आप वो जो प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है, आप फोटो उनको दिखाओगे जो उस मोमेंट पे हो नहीं पाए, घर पर जाकर ये देखो वहां इतना अच्छा हुआ, बट सेट पॉइंट है कि आप तो वहां रह के भी उसको नहीं देख पाए, आप फोटो लेने पे ही बिजी रहे। सो नाउ ये सारी चीजें, हमारा जिन मंदिर भी इतने सज सज कर जाना, ज्ञानानंद श्राफ का चार नामक ग्रंथ है, उसमें जिन देश की विनय ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखी, तो उसमें उन्होंने स्पेशली लिखा कि मंदिर में बहुत श्रृंगार करके जाना, बहुत ज्यादा सजे धजे वैभव के साथ जाना, ये जिन देश की अभिनय है। आप किसको दिखाने जा रहे हो इतना सज सज कर, ये आपके अंतरंग, वहां पर लिखा हुआ है, तीव्र काम कषाय के उदय होने पर ज्यादा श्रृंगार का होना होता है, और मंदिर में कामी जीवों का प्रवेश निषिद्ध है। तो कोई बहुत श्रृंगार करके मंदिर में या धर्म के प्रसंगों में जाए, वहां पर उसकी काम कषाय उत्तम है, बड़ी हुई है, तो ये उचित नहीं। सादगी भरे कपड़ों में, सिंपल, मतलब हम तत्व चर्चा करने आए हैं, साधनियों के बीच जा रहे हैं, तो हमारी जो प्रभाव करने की, हमारा इम्प्रेस करने का जरिया हमारा ज्ञान, हमारी विशुद्धि होनी चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति विनय, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, उससे हम एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे से उसके कारण प्रीति बनाए, किसके पास कितने अच्छे कपड़े, कितना अच्छा मेकअप, कितनी अच्छा सौंदर्य, ये सब धर्म सभाओं में या जिन मंदिर में शोभा नहीं देता, ये सब इसी मान के अंतर्गत आएगा।
वाह, क्योंकि वो मंदिरों में तो यहाँ हमारे तो छोटा है, वैसे इतना नहीं होता है, परंतु कई दफा कई जगह तो वैसा सुना था, और पहले हम रोबी थे तो वहाँ भी वो क्या है कि एग्जीबिशन हो जाता है ना, जवेरात का, कपड़ों का, मंदिर
कर नहीं, तो उससे एक तो परिणाम हमारे विशुद्ध नहीं हो पाते बराबर, तो उतनी विशुद्धि मंदिर आके भी नहीं कर पाए, हम भगवान के दर्शन अच्छे से हम अपने कपड़ों को संभालने में या दूसरों को देखने में ही लगे रहे, तो फिर क्या हमारा दुर्भाग्य कितना है, मतलब हम एकदम बहुत प्यासे थे और हमको बहुत मीठे पानी का तालाब भी मिल गया और हम उसके बाजू में भी खड़े हैं और अब हम पी नहीं पा रहे अच्छे से, क्या मतलब है? अब इतने हम इतने विषय कषायों को छोड़ के मंदिर तक आ गए, शास्त्र सभा शिविर तक आ गए, बिल्कुल अपना पूरा देश छोड़कर इतने दूर पंच कल्याणक देखने आ गए, और उसमें भी यदि हम इसी में लग गए, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, तो ये शरीर संबंधी शरीर की एकत्व बुद्धि को बताता है, रूप का मत। इसलिए सम्यक दृष्टि को, चूंकि शरीर से स्वबुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि नहीं है, उसको वेद ज्ञान है, तो उसके रूप मद नहीं होता। जिसके रूप मद हो उसके सम्यक नहीं होता। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को?
इट्स इंटरेस्टिंग कि पंच कल्याणक में वैसे बोलते हैं कि अच्छे कपड़े डालो, वे ऐसा करो, वैसा करो, वो सारा तो कॉन्ट्रडिक्टरी होता।
अब पंचकल्याणक नहीं बचे, वो इवेंट हो गए हैं बहुत बड़े। तो अभी तो बस कंपटीशन होता है कि कहाँ का पंचकल्याणक कितना अच्छा, भव्य, बड़ा, एलिगेंट होगा। तो देवों के कपड़े होते हैं बहुत अच्छे, होने चाहिए, देव है वो, राजाओं के भी होंगे, बट जो अटेंड करने जा रहे हैं वो स्टेज पर होने चाहिए ना। लेकिन हम और आप तो अटेंड करने जा रहे हैं वहां पर, तो हमारे तो एकदम, अब बताइए, तब कल्याणक का दिन है, दीक्षा का दिवस है, केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है। मतलब ठीक है, गर्भ और जन्म हो गया, जितना पार्टी शार्टी होनी थी, बारात हो भगवान की, भगवान का राज वैभव हो गया, बचपन हो गया, उसके बाद कहीं तो वैराग्य का प्रसंग बने। पंचकल्याणक का दर्शन तो सम्यक दर्शन में निमित्त है।
हाँ।
पर यदि हम दिखावे का यदि उसको इवेंट बना लेंगे तो फिर दिक्कत है उसमें। युगल बाबू जी इस पर बहुत कमेंट करते थे, ये कोई मनोरंजन का इवेंट नहीं है, ये तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा बनने की कला देखने आता है कि कैसे कोई जीव आत्मिक शांति के बल पर, वेद ज्ञान के बल पर सम्यक धारण करता है और देखो तीनों लोगों को भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये तो सामर्थ्य से भगवान बनने की कला है। पत्थर में भगवान की स्थापना होती है, चैतन्य में क्यों भगवान नहीं बन सकता? उसकी प्रेरणा मिलनी चाहिए और हम उसको इतने सामझाव में उलझाने के हमारे विचार ही नहीं रहे। अब तो पंचकल्याणकों के डिस्कशन ही बदल गए कि पंचकल्याणक में खाना अच्छा था, वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी थी, कहाँ पर स्टेज मिला था, इससे पंचकल्याणक की शोभा थोड़ी होती है।
और वो एंटरटेनमेंट पर बहुत,
कितने अच्छे डांसेस हुए, कितने अच्छे इवेंट्स हुए, ये थोड़ी पंचकल्याणक था। अब आखिर में जाके पूछो कि कितने भगवान, कौन कौन से भगवानों की प्रतिष्ठा हुई, मूल नायक कौन थे, क्या बोलते हैं उनको,
भगवान,
वो कुछ नहीं पता भगवान का। अच्छा ठीक है, शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है, तो उनको वैराग्य किस कारण हुआ, उनके वैराग्य का क्या कारण था, उनके दस भव थे तो उन्होंने सम्यक कब लिया, अच्छा उनके दस भवों में भी ऐसे भव थे कैसे, तो ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। सौधर मिंद्र का कैसा अच्छा डांस हुआ कि सचिन राणी का अच्छा हुआ, इस पर ही पूरा पंचकल्याणक निकल जाएगा, तो फिर हमारे मतलब की चीज क्या रही? एक इवेंट बन गया जिससे सम्यक्त की प्रेरणा हमको मिल सकती थी, हमने उसको मान को बढ़ाने का, अपने मान को ही सींचने का एक इवेंट बना लिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो ये सारे तो मतलब आप इसके लिए तो पुराने गुरुदेव श्री के समय के फोटोज देखो, इवेंट्स देखो, सब कितने सादगी से और एकदम बस जिनवाणी को, आत्मा की बात को सुनने बैठे हैं लोग। वैसी हमारी प्रवृत्ति हुई एकदम कि हम रसिक बनकर के, हम जिनवाणी के रसिया हैं, हम जिनदेश के भक्त हैं और हमको ये संसार, ये सारी ये चीजें तो छोड़नी है, तो इनसे अपना बड़प्पन ना देख कर जिनवाणी के सामने एकदम दास बनकर, किंकर बनकर उसके श्रवण के लिए आह्लादित हो। ऐसा ना हो कि राजसभा और इंद्र सभा में हमारी भीड़ हो और जब गुरुदेव श्री का प्रवचन चले या विद्वानों के प्रवचन चले तब हम चलो अब नाश्ता करके आते हैं, अब चलो यहाँ घूम कर आते हैं थोड़ा सिटी, ये प्रवृत्ति फिर हमारी मतलब ये अच्छी नहीं होती।
परंतु एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब गुरुदेव का प्रवचन चलता था हमारे यहाँ तो कितने कम लोग होते थे, सब वहाँ नाश्ता ही करते थे। अब ये मगर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए ना, उनको ये सारा ना थोड़ा विचारना चाहिए।
यही वाली बात सुभाषित रत्न संदूर में लिखी कि देखो विषयों की प्राप्ति तो त्रियंतों को भी सुलभ है, उन लोगों को भी उनका भोजन कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन दुर्लभ तो ये धर्म की बात सुन पाना है जो स्वर्ग के देवों को भी नहीं मिल पाती, जो साक्षात सिमंदर भगवान के समक्षण में जा सकते हैं, लेकिन विषयों का जाल ऐसा है कि वो छोड़ ले। देख लीजिए आप महंगी चीज क्या है, गुरुदेश जी का प्रवचन महंगा इसलिए ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो बैठ नहीं पाते, विषय बहुत सस्ते हैं तो सभाओं में नृत्यों में गाने बजाने की चीजों में बहुत भीड़ रहेगी क्योंकि दैट इज अफोर्डेबल। तो पापानुबंधी पुण्य के काम आ सकता है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य तो ये तत्व विचार, जिन देव की भक्ति, उनके समीप बैठना, उनके स्वरूप को निहारना, उनके भवों का विचार करना, ये दुर्लभ पुण्य का होता है, ये विशुद्धि हो पाना कठिन है। इसके लिए तो वो बिल्कुल अभी देखो आप ये वाली बात तो सोच लो, जितनी जितनी भीड़ सब्जी मंडी में होती है उतनी भीड़ सराफे बाजार में होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भीड़ रागरंग के प्रोग्राम में हो उतनी भीड़ वीतरागता के आयोजनों में तो नहीं होगी, तो गुरुदेवश्री के प्रवचन में तो कम ही लोग बैठने वाले हैं। हमें बस इंश्योर करना है कि हम किस भीड़ के पार्ट हैं, हम कितने ज्यादा रिच हैं, हमने क्या अफोर्ड किया है। तो ठीक है, हम आगे के मदों की, अब अगला जो मत है वो ज्ञान का मत है, और इस रूप के मत में सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी बहुत आती है, तो हम उसका भी डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऐसे ही बल के मत में नैनीनाथ युवराज की कहानी आती है, चक्रवर्ती की आती है, हम इन पर भी डिस्कशन करके आगे बात करेंगे। आपको भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग सोचिएगा, क्योंकि मत हमारी लाइफ के अंदर एकदम घुला हुआ है, हम कैसे बने जैसे बने तैसे, हमको सरल होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम क्षमा देन अगले ही धर्म है मार्दव, यदि वो मार्दव के विपरीत हमारे अंदर लघुता सरलता नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है, हम आगे तत्व विचार में बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, हम अगली चर्चा नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।